الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج کی اس مجلس سے ہم سلسلہ لیے نقشبندیہ کے جو معمولات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے 6 معمولات بیان کیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ یہ اعمال کرتا رہے گا وہ اللہ کے قرب کو ضرور پائے گا. خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ان معمولات کی ترتیب بنائی اور انہی کے نام پہ یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 راتوں تک اللہ سے ایک ایسی ترتیب مانگی کہ جو ضرور اللہ سے ملانے والی ہو. تو بزرگوں نے بہت زیادہ استخارہ کر کے، بہت زیادہ اللہ سے مانگ کے یہ ترتیب بنائی ہے، اور اس ترتیب نے وقت کے ساتھ ساتھ پروف کیا ہے کہ جو شخص ان اعمال کو پابندی سے کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی نماز بہتر ہو جاتی ہے، اس کی دعا بہتر ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کا گناہوں سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے. سوال یہاں لوگ یہ ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ 4 سلاسل کیا ہے اور یہ کیوں 4 الگ الگ سلاسل ہونے ضروری ہیں؟ نقشبندیہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ سلسلہ ہے اور قادریہ سلسلہ ہے، اور بھی سلاسل ہیں مگر یہ 4 مشہور سلاسل ہیں. چار سلاسل الگ الگ اس لیے ہیں کہ یہ 4 الگ الگ ذکر کرنے کی ترتیبات ہیں، یہ 4 الگ الگ ذکر کے مکس ہیں. تو مسنون جو اذکار ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ، اور کیونکہ آپ نے کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہا فرمایا اور کسی صحابی کو کچھ عمل کرنے کے لیے فرمایا، پھر آپ کے اپنے جو اعمال تھے وہ بھی منقول ہیں، تو یہ سب مل کے بہت بہت ایک ضخیم ذکر معمولات کی ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے. اس لیے حدیث کی کتب میں بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول اذکار ہیں ان کے لیے الگ ابواب بنائے گئے ہیں. ان سب کو کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، پھر وہ کسی اور کام کو نہیں کر سکے گا. تو مشائخ نے ان اذکار میں سے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ اعمال کو کیا، اور جن اعمال کو کرنے سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جی یہ اعمال تو ضروری ہیں ہی صحیح، اس کی ایک ترتیب بنا لی. اب یہ جو 4 مشہور سلسلے اس لیے بنے کہ یہ 4 مشہور ترتیبات ہیں، اور کئی ساری چیزیں سارے ہی سلاسل میں جو ہے وہ کامن ہے. مثال کے طور پہ استغفار کرنا سارے سلاسل کے معمولات، درود شریف پڑھنا سارے سلاسل کے معمولات، قرآن پاک کی تلاوت یہ سارے سلاسل کے معمولات میں ہے. سلسلہ یہ نقشبندیہ میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اور سلاسل میں شروع میں نہیں پائی جاتی، एक तो मुराकबा है, जिसको जिक्र कल्बी भी कहते हैं, दिल में अल्लाह को याद करना, और दूसरा जो है वो वकूफ कल्बी है, कि हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखना, हाथ काम काज में मसरूफ और दिल अल्लाह की याद में मसरूफ। और जो छठा अमल है वो है राबता शेख, कि सिलसिला ये नक्शबंदी है कि मशायख ने यह फरमाया कि जो शख्स शेख की खिदमत में हाजिर नहीं होता वक्तन फवक्तन, उसके लिए आमाल करना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए ये चार सलासिल हैं, इनकी चार अलग अलग तरतीबात हैं, बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। तो आज से इंशाल्लाह सिलसिला ये नक्शबंदियाँ की जो मामूलात हैं उनका तذکرہ किया जाएगा। उन मामूलात में सबसे पहला मामूल जो है वो इस्तग़फार है। मशाइख ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा इस्तग़फार कर लेता है, वो कसरत इस्तग़फार करने वाले लोगों में शामिल हो जाता है। और इस्तग़फार की बहुत ज्यादा फजीलत आई। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी कि इस्तग़फार हमने सिर्फ गुनाह के बाद नहीं बल्कि नेकी के बाद भी करने का आपने हमें फरमाया और तालीम दी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत कि नमाज जैसी खूबसूरत इबादत, नमाज जैसी अजीम शान इबादत के बाद भी आपने हमें ये तालीम दी कि हम 3 मरतबा इस्तग़फार करें, 3 मरतबा अल्लाह से माफी मांगे। इसी तरह हज जैसी बेहतरीन इबादत, हदीस पाक में आता है कि हज करने वाला गुनाह से ऐसे पाक, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहू, गुनाहों से ऐसे पाक जैसे उस दिन पाक था जब उसकी वालदा ने उसको जना था। तो इतना अजीम शान अमल ये हज का अमल, सारे गुनाह खत्म जीरो, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में फरमाया कि जब तुम हज करके वापस मीना की तरफ लौटो तो तुमने इस्तग़फार करना है। सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफाज़ अन्नासु वस्तग़फिरुल्लाह, और फिर तुम लौटो लोगों के साथ और इस्तग़फार करो। तो इस्तग़फार सिर्फ गुनाह के बाद करने वाली चीज नहीं, गुनाह के बाद तो करनी ही है, गुनाह के बाद माफी नहीं मांगेंगे तो कब माफी मांगेंगे। मगर नेकी के बाद भी करने वाली चीज, पुराने पाक में अल्लाह ताला ने अपने कुछ नेक लोगों का तذکرہ फरमाया कि इन्होंने बहुत जबरदस्त नेकी की, और तذکرہ यूं फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कानू कलीलम मिन अल्लैली मा यहजउन, ये वो लोग जो रात को थोड़ा सोते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, रात को थोड़ा सोते हैं, रात इबादत में गुजारते हैं, मगर जब सुबह का वक्त होता है, सहरी का वक्त आता है, फजर का वक्त शुरू होने को आता है, पूरी रात इबादत में जब गुजार देते हैं तो उस वक्त ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत ही बड़े नेक लोग हैं, पूरी दुनिया तो सोई भी है, हमने रात इबादत में गुजार दी। बल्कि अल्लाह ताला को उनको ये अमल पसंद आया तो अल्लाह ने कुरान में तस्करा फरमाया बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, उस रात की जब आखिरी वक्त आ जाता है, सुबह शुरू होने लगती है, तो अल्लाह से माफिया मांगते हैं, इस्तग़फार करते हैं। तो अल्लाह को वो बंदा पसंद जो नेकी भी करे और इस्तग़फार भी करे। इसीलिए नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, अस्तगफार तुम्हारे दिलों को चमका देने वाली चीज है। हमारे मशायख ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि मुझे किसी खास नेक अमल की बार बार तौफीक मिले, मिसाल के तौर पर इंसान हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है, उसका दिल करता है मैं बार बार अल्लाह के घर पे वापस हाजिर हूँ, नबी अलैहि सलातो वसलाम के मुबारक रोजे पे वापस हाजिर हूँ। तो मशाइख ने फरमाया कि अपने जिस भी अमल के आखिर पर वो खूब अस्तगफार करेगा, चंद तस्बीहात अस्तगफार की अगर पढ़ेगा तो अल्लाह उसको उस नेक अमल की बार बार तौफीक नसीब फरमाएंगे। तो ये अस्तगफार जो है ये मोमिन के लिए आखिरत की भी कामयाबी का जरिया, दुनिया की भी कामयाबी का जरिया। इसलिए मशाइख के पास जो भी आएगा पहला काम वो यही करेंगे कि आपको इस्तगफार की तरफ लगा देंगे। हदीस पाक एक बयान करके आज इस्तगफार की गुफ्तगू इतनी करेंगे। इस्तगफार के जो फजाइल मशाइख ने और लिखे हैं वो इंशाल्लाह कल की मजलिस में, मगर एक हदीस इस्तगफार के फजाइल के हवाले से बयान करना बहुत जरूरी है। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, मन लजिमल इस्तगफार, जिसने अपने ऊपर इस्तगफार को लाजिम किया, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़ मख़रजा, अल्लाह उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकालते हैं, व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, अल्लाह उसको हर गम में से निजात देते हैं, व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वहां से रिज़्क़ देते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। तो जिसने इस्तग़फ़ार को पकड़ लिया हर मुश्किल में से रास्ता निकलता है, और जिसने इस्तगफार को पकड़ लिया उसको वहां से रिस्क मिलता है जहां से उसको गुमान भी नहीं। हमारे जानने वाले एक बुजुर्ग शेख, एक बड़े आलिम दीन अमरीका तशरीफ ले गए, और अमरीका जब वो जिनके यहाँ मेजबान थे वो अमेरिकन थे, अमेरिकन से मुराद थे तो पाकिस्तानी, मगर वहां पे 30-40 साल से मुकीम थे, अमरीकी सिटीजन अमरीकी शहरी थे, वहां उनका बड़ा कारोबार भी था। तो उन्होंने दावत दी थी, वो बुजुर्ग जो है वो उनके यहाँ ठहर गए, बड़े आलिम दीन थे। अब उन्होंने अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में सफर करना था, तो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो ये जो मेजबान थे उन्होंने कहा, हजरत मैं आपके साथ चलूंगा इस सफर में, मैं आपका खादिम बनना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा, चले आप साथ। दोनों जब एयरपोर्ट पे गए और फ्लाइट लेनी थी तो वहां टिकटिंग काउंटर पे इन दोनों से कहा गया कि जी आप दोनों थोड़ी देर के लिए साइट पे खड़े हो जाएं। अब डोमेस्टिक फ्लाइट में ऐसे साइट पे खड़ा रखना ये अजीब लगता है, क्योंकि ना कोई इमिग्रेशन होती है, मुल्क से बाहर थोड़ी जा रहे, मुल्क की अंदरूनी परवाज है। तो ये जो अमरीकी शहरी जो मेजबान थे उनको बड़ा नाराजगी हुई, बल्कि उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि जी ऐसे हमें क्यों साइड पे खड़ा कर दिया गया। तो वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे। अब क्योंकि ये दोनों हजरात जो थे इनका जो हुलिया था वो चेहरे पे सुन्नत थी, सर पे टोपी पगड़ी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए साइड पे खड़ा कर दिया कि उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सिक्योरिटी चेक और कर लें इनके ऊपर। अब उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और ये बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैं तुम लोगों को सू करूंगा, मैं तुम लोगों के साथ ये करूंगा, और इस तरह से साइड पे खड़ा करना ये हमारे लिए बहुत ही जिल्लत का बायस है। तो वो साहब यूं कर रहे थे, जब बहुत ज्यादा उन्होंने गुस्सा दिखा लिया तो उन बुजुर्गों ने उनको बुलाया और कहा कि देखो हर मुश्किल से निकलने का हल अल्लाह के नबी ने इस्तगफार बताया, तो मैं भी यहां खड़ा हुआ इस्तगफार कर रहा हूं, उनसे लड़ने की बजाय तुम भी यहां खड़े होके इस्तगफार करो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाले। अब बड़ों की बात थी तो गो के अंदर गुस्सा और नाराजगी तो बहुत थी, मगर बुजुर्गों के कहने पे खड़े हो गए और इस्तगफार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उन्हीं का एहलकार आया और उसने आके कहा कि सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज प्रोसीड टू दी एयरलाइन। कि सर, हम बहुत माजरत चाहते हैं कि हमने आपको थोड़ी देर यहाँ खड़ा रखा, आप हवाई जहाज पे तशरीफ ले आए। तो ये इस्तगफार ऐसी चीज है कि इंसान खुद ब खुद मसाइल के हल की तरफ चला जाता है। तो इस्तगफार कसर से करने वाला अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकालते हैं और उसके ऊपर रिस्क की परेशानियों को उससे दूर कर देते हैं। रिस्क की परेशानी देखिए हर इंसान को आती है। रिस्क की परेशानी का मतलब ये नहीं है कि दूर होने का मतलब कि कोई रिस्क जो है वो आसमानों से जो है वो पैसे गिरने लगेंगे। रिस्क की परेशानी दूर होने का मतलब ये होता है कि इंसान के दिल को सुकून आ जाता है और जो उसके जरूरत होती है अल्लाह उसको जरूर पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी कसरत से इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.